તારીખ 3/1/1997 શ્રી સમયસર કળશ ટીકા શ્લોક 23 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું બાંધણીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 32
સમયસર કળશ ટીકા 23મો કળશ આત્મ સ્વરૂપના વિષયમાં જિજ્ઞાસા કેવી હોવી જોઈએ એ સંબંધમાં અમૃતચંદ્ર આચાર્યદેવ આ કોર્સની રચના કરી છે કે અહીં કથમપી મૃત્વા તત્વ કૌતુ હલીસન અનુભવ ભાવ મૂર્તે પાર્શ્વવર્તી મનોવતમ પૃથગથ વિલસંતમ સ્વ સમાલોક્યેન તેજસી જગતી મૂર્ત્યા સાકમ એકત્વમોહમ અર્થ હે ભવ્ય જીવ શરીરથી ભિન્ન સ્વરૂપ થા શબ્દ છે મૂર્તે હે પાર્શ્વવર્તી ભવ મૂર્તે એટલે મૂર્ત શરીર પાર્શ્વવર્તી એટલે પાડોશી પાર્શ્વવર્તીનું ગુજરાતી થાય પાડોશી ભવ એટલે થા હે જીવ તું શરીરનો પાડોશી થા પાડોશી મને પડોશી હે જીવ તું શરીર કા પડોશી હો જા તેરે બગલ મે કોઈ રહેતા હૈ એક શરીર ઉસકા તું પડોશી હો જા પડોશી સે સ્નેહ હોતા હૈ કિંતુ મર્યાદિત પડોશી સે સ્નેહ હોતા હૈ તો કિતના મર્યાદિત સ્નેહ હોતા હૈ ભલે બોલને મેં ઇતના એક આપકા ઘર હૈ હમારે યહાં કોઈ ભી ચીજ આપકો ચાહીએ તો બિના સંકોચ લે જાના આપકા એ ઘર સમજના ફિર ભી પડોશી વો પડોશી ઉસમે અપનત્વ હોતા શરીર કા તું પડોશી હો જા મતલબ અપનત્વ છોડ દે અપના માના હૈ વો છોડ દે તું પડોશી હો જા વો શબ્દાર્થ હૈ પરમાર્થ બહુત બઢિયા હૈ ઇસકા જો જીવ ભેદ જ્ઞાન કા પ્રયોગ કરતા હૈ ઉસકો શરીર બગલ મે ખોખા હૈ એસા લગતા હૈ ખોખા ક્યું કે જૈસે હીરા હોતા હૈ યા કોઈ આભૂષણ અલંકાર હોતા હૈ ઉસકો રખને કે લિયે ડિબ્બા હોતા હૈ એસે ચૈતન્ય હીરા કા ડિબ્બા હૈ ખોખા બગલ મે એક ખોખા હૈ ऐसा प्रयोग करने वाले को लगता है तो पड़ोसी हो जाने का मतलब यह है कि तुमको ये जो शरीर है ये बगल में कोई डिब्बा है ऐसा लगना लगना चाहिए ठीक है खोखा लगना चाहिए आता है પેન્સિલ રખને કે લિયે ખોડા ખોડા આપણે ખોડો કહીએ ઉસી આકાર કા ખોખા હોતા હૈ ખોડા હોતા હૈ ઉપર રખ દે એસે આત્મા કે આકાર કા એક ખોડા હૈ ખોખા અપને બગલ મે એસા તુમ અનુભવ કર એસા કહેતે હૈ ऐसा तुम अनुभव कर। इसका मतलब ये हो गया कि शरीर मैं हूँ ऐसा अनुभव तुझे नहीं होना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो शरीर जड़ है, उस शरीर के अंदर भीतर में तुम चैतन्य मूर्ति हो, ये जड़ की मूर्ति है, तुम भीतर में चैतन्य मूर्ति हो
जी।
तो तुम शरीर का पड़ोसी हो करके अपना काम करो, पड़ोसी रह करके अपना काम करो। उसका नाम हो गया भिन्न हो जा, शरीर से भिन्न हो जा। भावार्थ ऐसा है कि अनादिकाल से जीव द्रव शरीर के साथ एक संस्कार रूप होकर के चला आया है। अनादिकाल से अपने को शरीर रूप ही माना है, शरीर का वजन बढ़ा तो मेरा वजन बढ़ गया, शरीर का वजन कम हो गया तो मैं दुबला हो गया, शरीर दुबला होने से मैं दुबला हो गया, और शरीर सुंदर तो मैं सुंदर, शरीर कुरूप तो मैं कुरूप। एकत्व संस्कार, एक मेक रूप, शरीर मोटा तो मैं मोटा, एक मेक संस्कार चला आया है। संस्कार मैंने क्या कि मैं शरीर रूप ही हूं, जैसे अभी मनुष्य शरीर मिला है कि मैं मनुष्य ही हूं, दूसरी कल्पना नहीं आती उसको स्वप्न में भी, आत्मा मनुष्य नहीं है, अपनी आत्मा मनुष्य में एक चैतन्य मूर्ति आत्मा है, ऐसा लगना चाहिए। और मनुष्य आकार शरीर में कोई पड़ोसी है, रहता है, वो अपना काम करता है, मेरा काम नहीं करता है। अनादिकाल से जीव द्रव शरीर के साथ एक संस्कार रूप होकर चला आया है, अतः जीव को ऐसा कह करके प्रतिबोध करने में आया है, उपदेश देने में आया, प्रतिबोध माने उपदेश देने में आया है। ये जीव, यह जितना शरीर आदि पर्याय है ये सब पुद्गल कर्म के हैं, तेरे नहीं है। शरीर के जितनी अवस्था जिस प्रकार की जैसी भी है ये सब पुद्गल कर्म की है, पुद्गल पिंड की है, तेरी बिल्कुल नहीं है। शरीर भिन्न तुम भिन्न, शरीर की अवस्था बिल्कुल तेरी अवस्था नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, फिर भी आत्मा शरीर की क्रिया करता नहीं और शरीर आत्मा की क्रिया करता नहीं, ऐसी बात है। कुछ क्रियाएं आत्मा की वजह से होती है ऐसा लगता है, बाकी सब होता है ऐसी बात नहीं। ऐसा अगर होता तो जैसा आत्मा चाहता वैसा होता, लेकिन वैसा होता नहीं। इसलिए इस पर्यायों से अपने को भिन्न जान, शरीर की आत्मा की वजह से शरीर की क्रियाएं होती है, ऐसा स्वीकार करके शरीर से एकत्व तो किया है, उसको दृढ़ करना है। क्या करना है हमको, क्या करना है कि हमको शरीर से भिन्नत्व करने का है। हमारा प्रयोजन शरीर से भिन्नत्व करने का है। एकत्व तो हो रखा है अनादि से, उसको छोड़ना है, उसको तोड़ना है, ये हमारा प्रयोजन है। शरीर से एकत्व भाव रख करके नए नए शरीर मिले और परिभ्रमण चालू रहा। आत्मा स्वरूप से अशरीरी है, कैसा है, अशरीरी है, इसलिए सिद्धालिमा शरीर साथ नहीं होता, सिद्ध भगवान को शरीर साथ में नहीं होता, ये मूल स्वरूप में विराजमान हो गया सिद्ध अवस्था में। भिन्न जान करके शरीर की पर्यायों से अपने को भिन्न जान करके कुछ काल, थोड़ा काल तक शरीर से भिन्न चेतन द्रव्य रूप से अपने को प्रत्यक्ष पने आस्वाद कर, अनुभव कर, ये आचार्य महाराज का उपदेश है कि तुम अपने को चैतन्य द्रव्य रूप अनुभव कर। शरीर से भिन्न, शरीर जड़ है, इससे भिन्न चैतन्य द्रव्य रूप अपने को अनुभव कर। थोड़ा काल क्यों कहा, कि अनुभव जो है वो लंबा काल टिकता नहीं है, एक बात, और थोड़ा काल भी भिन्न हो गया तो हमेशा के लिए भिन्न हो जाएगा, फिर ये भिन्नता का प्रोसेस चालू रहेगा और सिद्धालय में सर्वथा भिन्न हो जाएगा। साधक अवस्था में इसका प्रोसेस चालू रहता है। थोड़ा काल मैंने शुरुआत तो कर दू, भिन्न होने की शुरुआत तो कर, शरीर के साथ गाढ़ मैत्री है, मेरा मेरा मेरा, जैसे दो मित्र होते हैं, बचपन से गाढ़ मैत्री हो गए, तो एक की बीमारी में दूसरा दुबला हो जाए, बीमारी एक को लगे और दूसरा दुबला हो जाए, इसकी इतनी चिंता करें, इसमें शंका पड़ जाए तो मैत्री जल्दी नहीं टूटेगी। क्यों, कि गाढ़ मैत्री है और लंबे काल की मैत्री है तो जल्दी संबंध नहीं टूटेगा, पहले क्या होगी, शंका करेगा, तो कुछ गड़बड़ करता है, मेरे अहित, मेरे साथ मेरा अहित हुए, ऐसा कुछ उसमें वो कुछ करता है। तो क्या हुआ कि मैत्री थी उसमें दरार पड़ी, क्या हुआ, दरार पड़ी ना, अपन तिराड़ कहिए सब गुजराती में, तिराड़ पड़ी, वो दरार पड़ी तो टूट जाएगी मैत्री, दरार पड़ने से वो जो गाढ़ संबंध था वो कमजोर हो गया, एकदम कमजोर हो गया। ऐसे शरीर से गाढ़ एकत्व था, थोड़ो काल एक सेकंड का अनुभव आया, बड़ी दरार पड़ गई बीच में, मैत्री टूट जाएगी, हमेशा के लिए टूट जाएगी। भावार्थ ऐसा है कि शरीर तो अचेतन है और विनश्वर भी है, नाश होने वाला है, जलाया जाता है। जब आयु पूर्ण होता है शरीर को, आत्मा तो कहाँ चला गया किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि वो अरूपी द्रव्य है और अपना संचित कर्म भोगने के लिए तो अन्य स्थान को ग्रहण कर लेता है अपने आप। यहाँ जो शरीर पड़ा रहता है उसको जलाया जाता है। तो शरीर तो अचेतन है, विनश्वर माने नाशवंत है, शरीर से भिन्न कोई तो पुरुष आत्मा है ऐसा जानपना, ऐसी प्रतीति मिथ्या दृष्टि जीवों को भी होती है। जगत के सब मनुष्य जानते हैं कि ये शरीर से भिन्न कोई जीव था, वो चला गया, उसकी प्रतीति मैंने सबूत भी मिलता है कि अभी उसमें कुछ है नहीं, बात खत्म हो गई, अभी कोई बात हमारी बात सुनने वाला नहीं रहा, जो सुनता था वो चला गया, जो देखता था वो चला गया। वो बात तो प्रत्यक्ष रूप से जगत के मिथ्या दृष्टि जीवों को भी समझ में आती है, जानते हैं बराबर कि ये मर गया, मर गया मैंने देह और आत्मा अलग अलग हो गया। तो अलग था जाति से, वो भी द्रव्य से भी अलग हो गया, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब अलग हो गया। परंतु ऐसा जानने से साध्य सिद्धि तो कुछ नहीं, जाना सबने, जाना तब तो उसको स्मशान तक ले जाते हैं शरीर को, अंतिम क्रिया करके बात खत्म करते हैं, मालूम तो पड़ता है, लेकिन इतना मालूम पड़ने से कोई साध्य सिद्धि नहीं है। अध्यात्म शास्त्र है तो बात कुछ गहराई से लेते हैं, मतलब ऊपर ऊपर से तो सब जानते हैं, शरीर भिन्न जीव भिन्न ये बात ऊपर ऊपर से तो सब जानते हैं, लेकिन इससे कोई कार्य सिद्धि नहीं होती। उसमें क्या है, पर लक्ष्य से जानना होता है, कौन मर गया का फलाना मर गया, मैं तो मरने वाला नहीं, ऐसा ही चलता है। खुद बीमार हो, अनेक प्रकार की बीमारी चलती हो, हार्ट डिजीज भी हो, ब्लड प्रेशर भी हो, डायबिटीज भी हो, हाँ अनेक प्रकार के महारोग हो, मैं तो उसको ये नहीं लगता कि मैं मर जाऊंगा, बस वो काम ऐसे करता है कि ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, इसकी व्यवस्था वो, इसकी व्यवस्था वो, जैसे उसको तो जाना ही नहीं है, ऐसा उनको लगता है। तो वो ज्ञान उसको निकम्मा हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, मर गया तो फलाना मर गया, मैं कहाँ मरा हूं और मैं कहाँ मरने वाला हूं, बिना विचारे उनको ऐसा ही लगता है। तो परलक्षी ज्ञान प्रयोजन को नहीं साधता, ज्ञान में कोई भूल नहीं है, जड़ और चैतन्य जीव और शरीर अलग अलग है ऐसा प्रत्यक्ष जाना, और प्रत्यक्ष जान करके ही शरीर को जलाया, फिर भी प्रयोजन की सिद्धि, साध्य सिद्धि, साध्य प्रयोजन है, उसकी तो सिद्धि नहीं हुई। वेद ज्ञान नहीं है, क्योंकि ऊपर ऊपर से जाना, पर लक्ष्य से जाना, अपना भी ऐसा होने वाला है तो बात कोई और हो जाती है, स्वलक्ष्य से जाने तो बात कोई और हो जाती है। और हो जाती है मतलब क्या कि संसारिक कार्यों और प्रसंग में एकत्व करके फिर वो काम करेगा नहीं, ये मेरा परिश्रम व्यर्थ जाता है। सारी जिंदगी में कितना भी परिश्रम करूं लेकिन कोई चीज मेरे काम में आने वाली नहीं है। सगे संबंधी, घर मकान परिवार सत्ता मिल गई, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो गया, माने कि मैं तो राजा हो गया हिंदुस्तान का। जब मर्डर हो जाता है सत्ता कुछ काम में आती नहीं है। उसने माना था कि मेरी सत्ता चलती है, लेकिन इसके बॉडीगार्ड उसको मारते हैं, किसकी सत्ता चली? तेरी सत्ता चलती तो तेरे बॉडीगार्ड तुझे मारते नहीं। हुआ कि नहीं हुआ? इंदिरा गांधी को ऐसा ही हुआ। उस दिन हम आगरा में थे, आगरा में श्री मुमुक्षु के वहां खाना खाते थे, वो रमेश भाई के साढ़ू के वहां खाना खाने को गए थे। बारह साढ़े बारह एक बजे संदेश आया कि भाई शॉट डेड, इंदिरा शॉट डेड, मर गई है, उसको शॉट शूट कर दिया गया। इसकी सत्ता तो सारे हिंदुस्तान पर चलती थी, अरे इसके बॉडीगार्ड पे भी नहीं चलती थी, हिंदुस्तान पे क्या चलती थी? जो मामूली पगार लेते थे, तनख्वाह लेते थे उनसे, उसके पर भी इसकी सत्ता नहीं थी। इसलिए कृपालु देव ने वो पद बनाया कि लक्ष्मी ने अधिकार वधता सुं वेधुं ते तो कहो, उनको पैसे भी मिले और सत्ता भी मिली। लोग कहते हैं कि अरबों रुपये उसने स्विट्जरलैंड में रखे थे, तो रखे मैं के मारे गए, सत्ता तो थी नहीं, मानी थी कि मेरी सत्ता चलती है, थी नहीं, थी तो उसको मारते नहीं अगर इसकी सत्ता चलती। क्या बड़ा तुमको क्या मिला? कुछ नहीं मिला है, आत्मा में तो कुछ आया नहीं था, मान करके क्या किया? संसार बढ़ाया, मान करके संसार बढ़ाया, दुर्गति मिल गई। वो अकेला आत्मा भोगेगा, जहां भी दुर्गति में गया अकेला आत्मा वो भोगेगा। मेरा ये मेरा ये मेरा करके मरा, मेरा 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 करके मरा, दुर्गति में जाएगा और अकेला भोगेगा। जिसके लिए किया है वो भी उसमें कोई थोड़ा भी हिस्सा इसके दुख में से ले सकेगा? अभी भी कहाँ ले सकता है? बीमार होता है, पीड़ा होता है, ये होता है, वो होता है, कौन हिस्सा लेता है? कोई हिस्सा ले सकता है? इसलिए इस प्रकार से तो कार्य सिद्धि नहीं, किंतु जब जीव द्रव्य का द्रव गुण पर्याय स्वरूप प्रत्यक्ष मने आस्वाद आए तब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है और सकल कर्म क्षय लक्षण मोक्ष भी है। क्या हुआ कि जब अपना अनुभव होता है अनुभव में द्रव गुण पर्याय तीनों का अनुभव होता है। द्रव मैंने अपना स्वरूप, गुण मैंने अपनी शक्तियां, पर्याय मैंने जहां अनुभव होता है ऐसी अवस्था। अनुभव तो अवस्था में होता है, द्रव गुण में नहीं होता। उस रूप अपना प्रत्यक्ष रूप आस्वाद को अनुभव कहते हैं, जीव का प्रत्यक्ष आस्वाद को अनुभव कहते हैं। तब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, तब सम्यक श्रद्धान भी है, सम्यक ज्ञान भी है और सम्यक चारित्र भी है, और तब सकल कर्म क्षय लक्षण मोक्ष भी है। ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम से सभी कर्म का क्षय होकर के मोक्ष हो जाएगा। तो ऐसा अनुभव किसको होता है? अब ये जो कलश का मुद्दा है वो यहां आता है कि ऐसा अनुभव कैसा जीव करता है, कौन जीव करता है, कैसा है अनुभवशील जीव। स्वरूप को अनुभव करने का स्वाभाविक रहता है वो जीव कैसा है। शरीर में हूं ऐसा सहज अनुभव रहता है उसकी बात नहीं करते। अब तो मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं ऐसा सहज अनुभव हुए उसको स्वरूप अनुभवशील जीव कहने में आता है। सिर्फ मैंने सहज होना, वो कैसा है कि तत्व कौतूहली सन। वो तत्व का कौतूहली पहले होता है, कुतूहल होता है ना, जानने की जिज्ञासा, उसको कहते हैं कुतूहल। तो तत्व मैंने शुद्ध चैतन्य तत्व, अपना स्वरूप शुद्ध चैतन्य ऐसा अपना स्वरूप, उसको तत्व कहते हैं, स्वतत्व आत्मतत्व, स्वतत्व और आत्मतत्व। उसका स्वरूप देखने को चाहता है, जानने को चाहता है, ऐसा हुआ, ऐसा होता हुआ, ऐसा होता हुआ, ये वो थयो थको होता हुआ। जो आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा रखता है वो अनुभवी होता है। क्या लिया? प्री स्टेज लिया। कहीं कहीं वो बात समय साथ में रखी है, यह उपदेश को दिया है कि कौतूहली सन, सन मैंने हो करके तत्व कौतूहली सन, सन मैंने हो करके, कुतूहली होकर के तुम अपना अनुभव करो। कुतूहल होने से दरकार आएगी। वैसे संसार में प्राय संसारी प्राणी को अपना स्वरूप जानने की दरकार नहीं है। दुनिया भर की बातें जानने का कौतूहल करेगा, इसके लिए टीवी देखेगा। आज के जमाने में, तो पहले के जमाने में अखबार पढ़ता था, कुछ भी करेगा, लेकिन दुनिया सारी दुनिया को जानने का कौतूहल करेगा, अपने को जानने का कौतूहल नहीं करेगा। गुरुदेव कहते थे जो कोई मकान बनाता है तो मेरी खिड़की में कितने सलिए, सलिया को क्या बोलते हैं, सली बोलते हैं, लोहे की सली आती है, कोई अंदर नहीं आ जाए मजबूत। मेरे को तो पतली सली नहीं चाहिए, मजबूत चाहिए, आधा इंच वाली नहीं चाहिए, 12 नहीं चाहिए, या 1 इंच मोटी चाहिए, और एक बारी में इतनी लगनी चाहिए। क्या ज्यादा जगह बीच में नहीं होनी चाहिए। वो पता है मेरे मकान में खिड़की में कितनी सली है लोहे की, वो पता है, लेकिन मेरे आत्मा में मेरे गुण कितने हैं उसके पता, उसका पता नहीं। ये इतनी दरकार कभी नहीं किया, अपने स्वरूप जानने के लिए कभी दरकार नहीं किया, बाकी सब दरकार किया। जो जीव शुद्ध चैतन्य वस्तु के स्वरूप को देखने को जानने को चाहता है, ऐसा होता है, उसको अनुभव होता है, लेकिन वो जानने की जो चाहत है, इच्छा है, वो कैसी होनी चाहिए कि कथम अपि मृत्वा, कथम अपि मैंने चाहे जैसा करके, मृत्वा मैंने मर करके भी, शब्दार्थ तो उतना है। राजमल जी ने अर्थ किया है कि कथम अपि माने किसी भी प्रकार से, किसी भी उपाय से, इसका मतलब ये हुआ कि अपने स्वरूप का अनुभव करने के लिए अगर तुम्हें मृत्यु आ जाए, इतनी प्रतिकूलता हो जाए तो भी भले हो जाए, इसको भी गौण करके तुम अपने स्वरूप का अनुभव करने का जिज्ञासा और प्रयत्न कर, फिर कोई प्रतिकूलता गिनने की बात नहीं है। मरण तक का पुरुषार्थ कर, भले शरीर बीमार हो जाए या शरीर सड़ जाए, पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, या किसी भी प्रकार की अन्य प्रतिकूलताएं आ जाए, स्वरूप का अनुभव करना ही है। प्रतिकूलता आने पर हमको हमारा आत्मिक पुरुषार्थ को छोड़ना नहीं है, वरना क्या करता है जी? देखो ना, आजकल तो उपाधि इतनी हो गई है कि हम आत्मा का कुछ नहीं कर सकते। क्या करते हैं कि कुछ उपाधियां बढ़ गई है तो आत्मा की बात छूट जाती है, ये नहीं होना। ये काम तो ऐसा है कि उपाधि में डबल करे, क्या उपाधि में डबल करे, क्यों कि ताकत का उपयोग तो वहीं करना है, ऐसे फुर्सत में हम शास्त्र लेके तत्व की अच्छी अच्छी बात करें और प्रतिकूलता आए तब वे बात छूट जाए तो क्या काम किया? वो तो ऐसी बात हुई कि एक आदमी व्यायामशाला में लाठी लेकर के दाव सीखता था, उसको लगा कि दाव तो मुझे बराबर आता है, लेकिन वो लाठी घुमाता था व्यायामशाला में, उसका खराब उपयोग तो उसको कोई मारने को आवे तब तो पता चले कि लाठी कैसे घुमा सकता है, तो कोई गुंडे मारने को आ गए तो मार खा लिया, उस वक्त तो मार खा लिया, फिर व्यायामशाला में जाके ऐसे ऐसे करने लग गया, क्या काम था? ऐसे उदय आया तब तो मार खा लिया, बाद में शास्त्र के बातें करने लगा, फुर्सत हुआ, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, वो भिन्न है, सब भिन्न है, ऐसा नहीं चले। काम तो उदय के काल में होता है और उदय में ही करने का है। बहुत लोग हमारे शास्त्र पढ़ने वाले ऐसा करते हैं कि क्या करें, आजकल तो उदय ऐसा चलता है ना, उदय इतना आ जाता है, इतना आ गया है, न तो स्वाध्याय कर सकते, न आत्मा का विचार कर सकते, न चिंतन कर सकते, सब खो गया। वो पहले से उनकी बात बराबर यथार्थ नहीं थे। यथार्थ हुए तो उदय में वो डबल जोर से काम करेगा। यहाँ तो राजमुल जी
के समय में अपना प्रयास करना ये तो उसका आराम है। उदय के समय में प्रयास करना ये उसका आराम है।
उदय के समय सहज प्रयास चालू हो जाना चाहिए अपने आप, अपने आप हो जाना चाहिए। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, अब खाली सड़क मिलती है तब तो भगाते हैं, हाँ, और ट्रैफिक सामने आ गया और घबरा गए तो
मर गया।
कितना भी तार ट्रैफिक आ जाओ, हम बराबर गाड़ी चलाएंगे, सेफली चलाएंगे, ट्रैफिक की कोई घबराहट हमको नहीं है। तो ये उदय है वो तो ट्रैफिक है, इससे कोई घबराना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, और सावधानी से काम लो। ट्रैफिक आया तो सावधानी बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? तो बढ़ जाती है, और सावधानी से काम लो। उदय आया तो और सावधान हो जाओ अंदर में, ऐसा सहज होना चाहिए, कृत्रिमता से नहीं, सहज होना चाहिए। वो बात करेंगे राज्य। हाँ, ऐसा उदय आएगा तो इधर से भग जाओ, इधर प्रतिकूलता मिलती है तो इधर से भग जाओ, जहां अनुकूलता मिले वहां चला जाओ। वो कार्य पद्धति नहीं। उदय में तो प्रयोग और सावधानी से करना चाहिए। भावार्थ ऐसा है कि शुद्ध चैतन्य का अनुभव तो सहज साध्य है, शुद्ध स्वरूप का अनुभव तो सहज होता है, यत्न साध्य तो नहीं, मतलब कृत्रिमता से तो किया जाता नहीं। परंतु इतना कह करके, इतना कह करके मतलब कथम अपि मृत्वा ऐसा कह करके, मर करके भी ऐसा कह करके अत्यंत उपादेयपना दृढ़ किया है कि हमारा स्वरूप अत्यंत अत्यंत उपाधि है, सर्वोत्कृष्ट उपाधि है, ऐसा उसमें बताया है। इतना कह करके अत्यंत उपादेयपना दृढ़ किया है, उसकी शैली ऐसी खींचाता नहीं करके कोई काम करता है, ऐसे काम नहीं होता इस लाइन में। क्या ये खींचाता नहीं का मार्ग नहीं, जबरदस्ती नहीं करना है, न दूसरे पर न हमारे पर, हट करके कोई काम नहीं करना है, सहज होना चाहिए। हट कौन करता है? जिसको नहीं होता है वो। और सहज किसको होता है? अपने आप प्रैक्टिस होती है, सहज होता है। तो मैंने एक दृष्टांत लिया है, कि 4-5 साल का एक बच्चा है, अपनी माँ का पल्लू पकड़ करके बाजार में चलता है। अब क्या हुआ कि वहाँ भीड़ बढ़ गई, टक्कर लगने लगी, तो सहज क्या होगा, पल्लू को मजबूती से पकड़ेगा। अगर ये पल्लू छूट गया तो मेरी माँ से मैं अलग हो जाऊंगा, तो उसको माँ से अलग होना नहीं है। भीड़ बढ़ गई, कुछ टक्कर लगने का मौका लग गया, तो पल्लू को सहज मजबूती से पकड़ेगा। वो जितना सहज है, वैसे उदय की टक्कर आने लगी, अंदर में पकड़ मजबूत हो जानी चाहिए, सहज सहज के उदय में हमको उलझना नहीं है, हमको हमारी पकड़ आ जानी चाहिए, सहज सहज इस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए, वो कहने का अभिप्राय। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि अनुभव तो ज्ञान मात्र है, अनुभव क्या है, मैं ज्ञान मात्र, उतना ही अनुभव है, इससे क्या कार्य सिद्धि है, ऐसा अनुभव से कार्य सिद्धि कौन सी है। वो भी उपदेश द्वारा कहते हैं कि जिस शुद्ध चैतन्य का अनुभव से द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्मात्मक समस्त कर्म रूप पर्यायों के साथ एक संस्कार रूप प्रतीति, ऐसा जिसका स्वरूप है, ऐसा दर्शन हो, ये विपरीत बना अनुभव होते ही तुम छोड़ेगा, अनुभव होते ही तुम अपने आप, अपने पुरुषार्थ से, अपने ज्ञान से छोड़ेगा। तो एक संस्कार रूप में अनुभव क्या होता है, मैं देव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं तिर्यंक हूँ, मैं नारकी हूँ, इत्यादि रूप, चार गति में से किसी एक गति के पर्याय होती है, जिस पर्याय में पैदा होता है उस रूप अपने को मान देता है, वो छूट जाएगा तेरा। शुद्ध चैतन्य का अनुभव होते ही तेरा वो प्रकार छूट जाएगा कि मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य नहीं, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। जब मैं मनुष्य ही नहीं, तो मनुष्य के योग्य जितने उदय आए वो मेरे नहीं है, उदय मेरे नहीं, तो उदय किसके हैं, कि उदय तो कर्म के उदय कर्म में है, कर्म के उदय कर्म में आते हैं, कर्म के उदय आत्मा में तो प्रवेश करते नहीं है, आत्मा को स्पर्श भी नहीं कर सकते, फिर तुमको चिंता का है कि किस बात की चिंता है। अथवा मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, इत्यादि रूप, मैं भी दुखी हो गया, मैं सुखी हो गया, ये विपरीत पना है, ये दर्शन मोह है, ये अनुभव होने से छूट जाता है कि ये सुख दुख की कल्पना मुझे अभी करने की बात रहती नहीं है। और मैं क्रोधादि, मैं क्रोधी हूं, मैं मानी हूं, इत्यादि वो भी छूट जाता है, क्योंकि मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, क्रोध मान मेरी चीज नहीं है। तथा मैं यति हूं, गृहस्थ हूं, मैं त्यागी हूं और मैं गृहस्थ हूं, मैं मुनि हूं, या मैं गृहस्थ हूं, ये दर्शन मोह रूप विपरीत है। गृहस्थ हूं वो तो विपरीत है, लेकिन मुनि हूं ने वो भी विपरीत है। देखो राजमल जी ने कितनी बात लिया है। न मैं गृहस्थ हूं न मैं त्यागी हूं, मैं तो एक शुद्ध आत्मा चैतन्य स्वरूप आत्मा ही हूं, मैं गृहस्थ त्यागी मैं कुछ हूं, ये तो कर्म जनित अवस्था है। ग्रस्तपना भी उदय है और मुनिपना भी उदय है, वो आत्मा नहीं है, आत्मा का स्वरूप नहीं है, उदय है वो आत्मा का स्वरूप है ही नहीं। क्यों? कि जब पैदा होता है तो गृहस्थ कहवा होता है, तो गृहस्थ घर में रहता है तो गृहस्थ कहलाता है। अब कोई जीव ये ग्रस्तपना को छोड़ करके मुनि बन जाता है, मानने लगता है कि मैं मुनि हो गया, लेकिन गृहस्थ में भी ये पक्का करके न मैं गृहस्थ हूं न मैं त्यागी हूं, फिर मुनि हो जाए तो ठीक है। पहले गृहस्थ मानता था, अब त्यागी मानता है, वो तो बात वो की वो होगी। मैं संयोग वाला, अब मैं संयोग छोड़ने वाला, वो तो वो की वो बात होगी। आत्मा तो आत्मा है। इत्यादि रूप प्रतीति, ऐसा ही श्रद्धा, ऐसा है मोह। कौन सा मोह? दर्शन मोह, मिथ्यात्व मोह। कितने बोल लिए, न मनुष्य हूं न देव हूं, न सुखी हूं मैं न दुखी हूं, न क्रोधी हूं न मानी हूं, और न गृहस्थ हूं और त्यागी हूं, कुछ नहीं। ये सब कर्म का वेश है, उदय का वेश है, मेरा नहीं। ऐसा विपरीतपना स्वरूप का अनुभव होते ही उसी काल में, जैसा अंदर में अनुभव हुआ, सब कल्पना खत्म। तुम अपने ज्ञान से, बुद्धि से, मैंने अपने ज्ञान से ही छोड़ देगा। भावार्थ ऐसा है कि अनुभव ज्ञान मात्र वस्तु है। अनुभव क्या चीज है? मैं ज्ञान मात्र, उतना ही अनुभव है। तो साध्य सिद्धि, कार्य सिद्धि क्या हुई? कि ज्ञान मात्र ऐसा अनुभव होते ही मैं गृहस्थ हूँ, यति हूँ, दुखी हूँ, सुखी हूँ, मनुष्य हूँ, देव हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, ये सब कल्पना छूट जाती है। एकत्व मोह मिथ्यात्व रूप द्रव्य का विभाव परिणाम है। जो एकत्व रूप मोह है वो मिथ्यात्व रूप द्रव्य के विभाव परिणाम है, तो भी उसको मैंने अनुभव होना और मिथ्यात्व को मिटना, आपस में कारण कार्यपना है। कारण क्या हुआ कि अनुभव को मिटना, अनुभव को होना और मिथ्यात्व को मिटना, मिथ्यात्व का अभाव और अनुभव का सद्भाव, इस प्रकार से कारण कार्यपना है। जिस काल अनुभव, उसका विवरण ऐसा है कि जिस काल जीव को अनुभव होता है उसी काल मिथ्यात्व परिणमन मिट जाता है। स्वरूप का अनुभव होते ही अपने विषय में जितनी मिथ्या कल्पना थी कर्म के उदय संबंधित सब छूट जाती है। मिथ्यात्व परिणमन मिटता है, सर्वथा अवश्य मिटता है। मिथ्यात्व कितना मिटता है? सर्वथा और अवश्य अवश्य मिटता है। यही अनंत संसार की जड़ है। मिथ्यात्व है वही अनंत संसार की जड़ है। वो पूरा मिटता है और अवश्य मिटता है। जिस काल मिथ्यात्व परिणमन मिटता है उसी काल अवश्य अनुभव शक्ति होती है, और मिथ्यात्व परिणमन मिटने से ही अनुभव की ताकत आ जाती है। एक बहुत साफ बात वो है कि जहाँ हमारा अस्तित्व नहीं है वहाँ हम अपनापन करते हैं, वही मिथ्यात्व है। हम वहाँ धोखा खा जाते हैं। कर्म के उदय से जो संयोग हुआ उसमें अपनत्व किया, वो हम धोखा खा गए, वो भूल कर बैठे। अब श्री गुरु कहते हैं कि ऐसी भूल को तुम छोड़ना, तुम तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हो, जैसे भगवान है ऐसा तुम भी भगवान हो, तुम क्यों ये करता है भूल, तुम ये भूल छोड़ दो, ये छूटते ही तुम्हारे में स्वरूप का अनुभव करने की शक्ति जो है वो कार्यगत हो जाएगी और तुम्हारा पूरा पूरा संसार छूट जाएगा। और ऐसा होने में करने में तुमको कौन सी तकलीफ है वो बताओ। अगर तुम्हारी कोई तकलीफ हो तो दूर कर देंगे हम, लेकिन कोई तकलीफ वाली बात तो उसमें है ही नहीं। वो कहते हैं कि ऐसा मिथ्यात्व परिणमन जिस प्रकार से मिटता है उसकी विधि, उसकी रीत कहते हैं क्या कि स्वम समालोक्य, अपने का अवलोकन करने से। कौन सी विधि है? सम स्वम, मैंने अपने आप को सम आलोक्य, अच्छी प्रकार आलोकन करना, अवलोकन करना, अनुभव करना, वेदन करना, अपने शुद्ध चैतन्य वस्तु का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद करके ये मिथ्यात्व को तुम छोड़ सकता हो। देखो तेरे में तेरा ज्ञान वेदन चल रहा है, इतनी अच्छी अच्छी तरह ये बात बताई है ज्ञानियों ने। देखो तुम्हारे में ज्ञान ज्योति, जलहलती ज्ञान ज्योति, जगमगती ज्ञान ज्योति जीवंत है। देखो ज्ञान ज्योति अपने आप में जीवंत है, वही तुम्हारा स्वरूप है। ये शरीर में हूं, ये संयोग वाला में हूं कर करके दुखी हो गया, तुम अपने ज्ञान ज्योति को भूल गया, अपने आप को भूल के हैरान हो गया, बस इतना दुखी होने का यही कारण है।
आपको भूल गया,
इनसे क्या अंधेर,
समय समय नहीं भूलेंगे।
अब ये स्मरण करके हंसी आती है कि अब तो हम भूलने वाले नहीं है। कैसा है शुद्ध चैतन्य के अनादि निधन प्रकट रूप से चेतना रूप परिणमन कर रहा है, अनादि अनंत प्रकट रूप से चैतन्य रूप से परिणमन इसका हो ही रहा है। तेरा चैतन्य अचेतन कभी हुआ, तुम्हें देखा नहीं सामने, दरकार किया नहीं, तो भी चेतन तो चेतन रूप परिणमन कर रहा है, वो अचेतन होने वाला नहीं है। लेकिन अचेतन के शरीर आदि से तुमने उतना घनिष्ठ नाता किया कि अपने चेतन को भूल गया। ऐसे इस कलश में आचार्य श्री ने स्वानुभव करने की प्रेरणा दी है। स्वानुभव करो, तुम्हारे सब आपत्ति गुम हो गुल हो जाएगी।
सुखदा